दिन भर गुरुवार 26 नवंबर मैं हूं निखिल रंजन। क्या है सेकुलर शब्द की परिभाषा? संसद में पहले दिन उठा सवाल।
सेकुलर शब्द का जो औपचारिक अनुवाद है वह है पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं।
मुंबई हमलों की आज 7वीं बरसी, कितनी सुरक्षित हुई है माया नगरी?
दोबारा मुंबई टाइप हमला किसी भी भारत के शहर में हो तो डर है कि जो मुंबई में हुआ था कुछ साल पहले वो दोबारा गुजरेगा।
तुर्की ने जारी किया रूसी पायलट को दी गई चेतावनी का ऑडियो। रूस ने कहा सीमा पर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल तैनात करेगा। आपकी चिट्ठियों के साथ खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। संसद सत्र के पहले दिन संविधान के प्रति निष्ठा जताने के लिए विशेष चर्चा शुरू करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में सेक्युलर शब्द का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ है और इसे बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी के शब्द सेक्युलर का औपचारिक अनुवाद पंथ निरपेक्ष होता है, धर्म निरपेक्ष नहीं। विपक्ष ने राजनाथ सिंह के इस बयान पर नाराजगी जताई है। रूस के सरकारी मीडिया के मुताबिक रूसी सेना तुर्की की सीमा से 50 किलोमीटर दूर सीरिया के लटाकिया प्रांत में अपने सैन्य बेस पर अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा तंत्र तैनात करने जा रही है। ये मिसाइल तंत्र 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि तुर्की जानबूझकर मॉस्को और अंकारा के बीच रिश्तों को खराब करना चाहता है। मंगलवार को तुर्की द्वारा रूसी विमान गिराए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव परा हुआ है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा,
До сих пор мы не слышим невнятных
तुर्की में उच्च स्तर के अधिकारियों या वरिष्ठ नेताओं में से अभी तक किसी ने भी माफी नहीं मांगी है या अपराधियों को सजा देने या नुकसान के लिए जुर्माने की बात भी नहीं कही गई है। ऐसा लगता है कि तुर्की का नेतृत्व जानबूझकर रूस और तुर्की के रिश्तों को खराब करने की कोशिश कर रहा है। हमें इससे बहुत दुख हो रहा है। ये थे पुतिन के शब्द। सीरिया में हवाई हमले के लिए ब्रितानी सांसदों की मंजूरी के लिए अपना पक्ष रखते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा है कि दूसरे सहयोगी देश सीरिया में लड़ रहे हैं और ब्रिटेन सक्रिय न हो, ये अनैतिक है। डेविड कैमरन ने सांसदों से इस्लामिक स्टेट के खिलाफ सैनिक कार्रवाई की व्यापक रणनीति का समर्थन करने की अपील की है। सीरिया में ब्रिटेन के हस्तक्षेप पर वहां के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में आने वाले हफ्तों में वोटिंग हो सकती है। मानवाधिकार की यूरोपियन कोर्ट ने फ्रांस की एक मुस्लिम कार्यकर्ता की अपील खारिज कर दी है जिसमें उसने कार्यस्थल पर हिजाब पहनने की इच्छा जताई थी। क्रिस्टीन इब्राहिमीन को पेरिस के अस्पताल में हिजाब पहनने की वजह से नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। अस्पताल ने कहा था कि क्रिस्टीन के खिलाफ कई मरीजों ने शिकायत की थी। फ्रांस के कानून के मुताबिक किसी धर्म के संबंध का स्पष्ट प्रदर्शन करने पर मनाही है। अदालत ने कहा कि यह अदालत का काम नहीं है कि देश में कार्यस्थल से जुड़े कानूनों पर कोई टिप्पणी करे। चीन की सरकारी खुफिया जानकारियों को लीक करने के आरोप में जेल में बंद चीन की एक पत्रकार ने स्वास्थ्य कारणों से जेल से बाहर सजा काटने की अनुमति मांगी थी जो उन्हें मिल गई है। बीजिंग की एक अदालत ने गाओ यू की 7 साल की सजा को घटाकर 5 साल कर दिया था। बाद में उन्हें जेल से बाहर आने का आदेश दे दिया गया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम आप bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं। आज निखिल रंजन के साथ। आज 26 नवंबर है और आज संसद में शीतकालीन सत्र का पहला दिन था। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश में सेक्युलर शब्द का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ है और इसे बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी के शब्द सेक्युलर का औपचारिक अनुवाद पंथ निरपेक्ष होता है, धर्म निरपेक्ष नहीं। वह आज शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन संविधान के प्रति प्रतिबद्धता जताने के लिए हो रही 2 दिन की विशेष चर्चा शुरू कर रहे थे। दिल्ली से विनीत खरे की रिपोर्ट।
गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष में उन्हें याद करते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और संविधान बनाने में उनके योगदान पर बात की। उन्होंने कहा कि देश में सेक्युलर शब्द का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ है और इसे बंद किया जाना चाहिए।
मैं यह मानता हूं कि सोशलिस्ट और सेक्युलर यह शब्द यदि डालना यदि आवश्यक रहा होता तो निश्चित रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत के प्रियम्बुल में उसी समय सोशलिस्ट और सेकुलर इन शब्दों का जो है प्रयोग किया होता। अध्यक्ष महोदय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसलिए सोशलिज्म और सेकुलरिज्म इन शब्दों का प्रयोग संभवतः इसलिए नहीं किया था कि वह मानकर चलते थे कि यह भारत की जो मूल प्रकृति है, भारत का जो मूल स्वभाव है, उसमें ही यह समाहित है, अलग से इसका प्रियम्बुल में उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
राजनाथ सिंह ने कहा कि सेकुलर शब्द का अर्थ धर्म निरपेक्ष नहीं पंथ निरपेक्ष है।
सेकुलर शब्द का जो औपचारिक अनुवाद है वह है पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं। भारत का धर्म ही स्वयं में पंथ निरपेक्ष है, स्वयं में ही भारत का धर्म यह अपने में स्वयं, इसलिए इस हकीकत को भी वह समझते थे, इसीलिए उन्होंने सेकुलर शब्द का प्रयोग खड़गे साहब भारत के प्रियम्बुल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नहीं किया था।
गृह मंत्री के बयान पर विपक्ष के सदस्यों ने नाराजगी जताई है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उपेक्षा और अपमान सहते हुए भी भारत छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। उनके इस बयान को फिल्म अभिनेता आमिर खान पर तंज के रूप में देखा जा रहा है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के जवाब में कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने कहा कि जिन मूल्यों के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने काम किया आज उन्हीं पर हमला हो रहा है।
अध्यक्ष महोदय, आज एक खुशी का दिन लेकिन दुख का भी है। दुख इसीलिए है कि संविधान के जिन आदर्शों और सिद्धांतों ने हमें दशकों से प्रेरित किया है आज उन पर खतरा मंडरा रहा है। उन पर जानबूझकर हमला हो रहा है।
जहां एक तरफ जीएसटी और अन्य महत्वपूर्ण बिलों को संसद में पास करने के लिए सरकार को कांग्रेस की मदद की जरूरत है, क्या आज की बयानबाजी सरकारी कोशिशों को आसान बनाएगी? सवाल का जवाब आसान नहीं है। विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
जैसा कि मैंने पहले कहा कि आज 26 नवंबर है और 7 साल पहले इसी तारीख को मुंबई पर चरमपंथियों का हमला हुआ था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस हमले ने 3 दिन तक एक तरह से मुंबई को बंधक बना लिया था। 166 लोगों की जान गई और मुंबई पुलिस के बड़े अधिकारियों समेत आतंकवादी विरोधी दस्ता एक तरह से खत्म हो गया। सुरक्षा एजेंसियों के साथ ही सरकार और आम लोगों के लिए मुंबई की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई। उस वक्त मुंबई की सुरक्षा को लेकर सरकार ने बड़े बड़े कदम उठाने का ऐलान किया। अभी हाल ही में पेरिस में जब चरमपंथियों ने धावा बोला तो उस वक्त भी मुंबई हमले की याद लोगों के जहन में एकदम से ताज़ा हो गई। वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण स्वामी सुरक्षा मामलों पर काफ़ी छानबीन करते रहते हैं और उन्होंने हाल ही में मुंबई पर भी काफ़ी खोजबीन की है और अब कितनी सुरक्षित है मुंबई ये जानने के लिए उनसे बात की हमारे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव ने।
ये मेरे ख्याल से स्पष्ट है कि पेरिस में जबकि कई सारे इंटेलिजेंस फेलियर अब सामने आ रहे हैं, हमले शुरू होने के बाद पुलिस ने बहुत कॉम्पिटेंस के साथ मामला निपटाया। आपने देखा होगा कि 2 घंटे के अंदर लगभग सारे ऑपरेशन खत्म हो गए थे और बटरक्लान थिएटर में पुलिस के पहुंचने के बाद बहुत कम लोगों को दहशतगर्द मार पाए। ये इसलिए हुआ क्योंकि मुंबई के हमलों के बाद दुनिया के कई सारे शहरों में पुलिस ने बहुत अपने ट्रेनिंग प्रोसीजर, अपने कैपेसिटी काफी मतलब मजबूत किए और उनकी सफलता पेरिस में दिखाई थी। अफसोस की बात है कि इंडिया में हम बहुत कम सबक इस घटना से सीखे, मुंबई की घटना से सीखे, और हमारे अधिकांश शहरों में अगर दोबारा ऐसे हमला हो तो मुझे डर है कि रिजल्ट कोई खास अलग नहीं होगा।
प्रवीण, ये बताएं कि जो वेस्ट है जहां पर अब इस तरह के हमले ज्यादा हुए हैं मुंबई के बाद से, क्या उन्होंने मुंबई को एक बेंचमार्क बनाया है और उसके बाद से उनके अंदर खास तौर से उन्होंने प्रिपेयर किया था अपने को इस तरह की इवेंचुअलिटीज के लिए तमाम कंट्रीज?
बिल्कुल, जैसे कि बटरक्लान थिएटर के हमले में पेरिस पुलिस के स्पेशल फोर्सेज ने बैलिस्टिक शील्ड का इस्तेमाल किया ताकि दहशतगर्द धीरे धीरे हॉस्टेजेस से दूर किए जाए और पुलिस बिना गोली लगने के डर के साथ आगे बढ़ पाए। हिंदुस्तान में किसी पुलिस फोर्स के पास इस वक्त तक ये बैलिस्टिक शील्ड नहीं आए हैं। आपने देखा होगा कि मुंबई हमलों के बाद लगभग दुनिया के हर बड़े शहर से लंदन से, न्यूयॉर्क से, तमाम बड़े शहरों से पुलिस टीम आई यहाँ स्टडी करने के लिए कि ये हमले में क्या टैक्टिक्स इस्तेमाल हुए थे और अगर उनके शहर में ऐसे कोई घटना हो तो वो क्या कर सकते हैं उसको रोकने के लिए। कई शहरों में जैसे कि सिंगापुर में हर साल ऐसे किसी अटैक के प्रैक्टिस और रिहर्सल होते हैं जिसमें सिर्फ पुलिस नहीं लेकिन बाकी तमाम इमरजेंसी सर्विस भी ट्रेन होते हैं और उसके रिजल्ट हर जगह दिख रहे हैं। जैसे कि बॉस्टन में कुछ साल पहले जो बॉस्टन मैराथन पे हमले हुए थे उसमें अस्पताल के पहुंचने के बाद एक विक्टिम भी नहीं गुजरा क्योंकि हर साल डॉक्टरों ने और नर्सेज ने, एम्बुलेंस ड्राइवर्स ने इसकी ट्रेनिंग की थी। पेरिस में जैसे हमने देखा पुलिस के बाटाक्लान थिएटर पहुंचने के बाद कोई हॉस्टेज नहीं मारा गया। इंडिया में ऐसे ना रिहर्सल होते हैं, ना स्पेशल ट्रेनिंग हुई है, ना वेपन्स और टैक्टिक्स का कोई ओवरहॉल हुआ है। जैसे कि मैं कह रहा था, बहुत अफसोस की बात है लेकिन अगर दोबारा मुंबई टाइप हमला किसी भी भारत के शहर में हो तो डर है कि जो मुंबई में हुआ था कुछ साल पहले वो दोबारा गुजरेगा।
रक्षा मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण स्वामी बता रहे थे कि मुंबई पर हुए हमले के बाद क्या सबक लिए गए हैं। मुंबई पर हमला करने वाले समंदर के रास्ते शहर में दाखिल हुए और तब इस बात की भी ज़रूरत महसूस की गई कि किनारों को सुरक्षित बनाने में आम लोगों को भी सक्रिय किया जाए। जिन रास्तों से वो लोग दाखिल हुए वो वीरान नहीं आबाद इलाके हैं और वहाँ रहने वालों के मन में क्या अब भी ऐसा भय रहता है या फिर वो पूरी तरह से निश्चिंत हैं सरकार के भरोसे। हमारे सहयोगी अश्विन अघोर ने मुंबई से इस बारे में ये रिपोर्ट भेजी है।
26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए आतंकी हमले को आज 7 साल पूरे हो गए। इन 7 सालों में बहुत कुछ बदला है। पुलिस डिपार्टमेंट में, पुलिस महकमे में बहुत सारे बदलाव आए हैं, कई सारी खामियां दूर की गई है। सरकार की तरफ से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि मुंबई शहर की जो सागरी सुरक्षा है वह अब पुख्ता है, जिसके लिए सरकार की ओर से काफ़ी कदम उठाए गए हैं। विदेशों से कई सारे हथियार, कई सारी सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स और प्रणालियां मंगाई गई है जो सही तरीके से काम कर रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे कुछ अलग है। हमने बात की मुंबई पुलिस के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी पीके जैन से। पीके जैन जो DIG रैंक के ऑफिसर थे, मुंबई पुलिस में उस वक्त कार्यरत थे जब 26/11 का हमला हुआ था। इस हमले को और उसके बाद हुई सारी घटनाओं को जैन साहब ने काफी करीब से देखा है।
कुछ चीजें जो है वो सरकार ने कर दी है, फॉर एग्जाम्पल फोर्स वन बना दी, QRTs बना दी, वेपन अच्छे दे दिए, उसके बाद में कुछ बख्तरबंद गाड़ियां जो थी वो हमारे को आर्मर्ड कार दे दी, इस तरह अच्छा बोट्स भी ले ली, इक्विपमेंट वगैरह भी हो गया, मैन पावर भी ले ली, लेकिन कुछ चीजें जो सिस्टमिक फॉल्ट हैं वो अभी तक दुरुस्त नहीं हुए। आपका इक्विपमेंट जैसे है अभी बॉम्ब डिस्पोजल सूट्स है अभी आपके पास में है ही नहीं बिल्कुल, वो पिछले 6-7 साल से प्रोक्योरमेंट हुआ ही नहीं उसका। उसके बाद में बुलेट प्रूफ जैकेट्स आपके पास में अभी तक नहीं है, तो कुछ पर्सनल सेफ्टी के इक्विपमेंट हैं जो अभी तक गवर्नमेंट परचेज नहीं कर पाई। एक तो हमारे पुराने जो गृह मंत्री थे, अनफॉर्चुनेटली इज नो मोर देयर, ही वाज अ थॉरली यूजलेस एंड नेगेटिव कैरेक्टर, उस बंदे ने हमारा बिल्कुल मतलब उसे बैठा बिठा दिया पूरे स्कीम का। तो कोस्टल सिक्योरिटी में फॉर एग्जाम्पल आपको रडार्स लगाने थे, आपको बोट्स के लिए एक होमिंग डिवाइसेस है वो देनी थी, या फिशरमैन के आई कार्ड देने थे, या हमारी जो पुलिस की बोट्स है उनके लिए एडिक्वेट प्रोविजनिंग करनी थी, वो सब नहीं हो रहा।
ये थे पीके जैन, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मुंबई पुलिस। मुंबई के कोस्टल इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं वो कोली फिशरमैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और इस बारे में हमने बात की नंदकुमार पवार जो फिशरमैन कम्युनिटी के नेता हैं। नंदकुमार पवार ने कहा,
ठीक है कि अभी थोड़ा सा अलर्टनेस है लेकिन कई जगह पर देखा जाता है कि एकदम इजी एक्सेस कर सकते हो, किधर भी आओ जाओ, इतना कुछ खास सीरियसनेस लगता नहीं उसका इंसिडेंट के बाद। ओवरऑल ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पे कंटिन्यूस पेट्रोलिंग होनी चाहिए, समुद्र के इलाके हो या भी ऐसे रास्ते है जहाँ पे टेररिस्ट अंदर घुस सकते हैं इनलैंड में, तो ऐसे कई रास्तों पर ये पेट्रोलिंग होनी चाहिए कंटिन्यूसली, ना कि कोई इंसिडेंट होने के बाद आप अलर्ट हो जाते हो फिर एकदम रिलैक्स हो जाते हो, ऐसा होना चाहिए, कंटिन्यू पेट्रोलिंग होनी चाहिए। हमने कई बार ऐसा सुना है कि कई पेट्रोलिंग बोट्स हमने बाहर से इम्पोर्ट किए अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी वाली, लेकिन उनका इस्तेमाल कभी हुआ ही नहीं, ऐसे ही पड़े एक जगह पे।
उस कम्युनिटी में अब तक ये विश्वास पैदा नहीं हुआ है कि सरकार की तरफ से की जाने वाली सारी जो सुविधाएं हैं और जो भी कदम उठाए गए हैं वो आतंकी हमलों को रोकने में कारगर साबित हो सकते हैं।
ये थे मुंबई से अश्विन अघोर जो बता रहे थे कि मुंबई के किनारों को सुरक्षित बनाने के लिए क्या कुछ अब तक किया गया है।
BBC इंडिया बोल।
अच्छी लड़की घरेलू संस्कार होने चाहिए,
दुनियादारी में अच्छी समझ होनी चाहिए।
अच्छे घर की लड़कियां नहीं जाती हैं नशे की तरफ।
अच्छी लड़की के अंदर घर के काम करने के सारे गुण होने चाहिए। घर का काम, बर्तन वगैरह धोना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना।
आपकी नज़र में अच्छी लड़की की क्या परिभाषा है? इस बार इंडिया बोल में बात होगी इसी विषय पर। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 28 नवंबर को शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1811-7001 पर। इंतजार किस बात का?
बीबीसी इंडिया बोल।
तो आप भी जरूर फोन करिएगा। और इधर बिहार में सत्ता के नए कार्यकाल के लिए शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी के लिए कदम उठाने की बात कही है। ये खबर उन लोगों के लिए थोड़ी परेशानी भरी हो सकती है जिन्हें शराब का शौक है, लेकिन इसका क्या असर होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आइए सुनिए कि नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं।
अब अपने काम को एक दो दिन और डिपार्टमेंट के सबको देखकर सीधे इस पर हमने कहा है कि इसका एक्शन प्लान तैयार करिए और मेरे लिए वो तारीख है 1 अप्रैल 2016 से हम इसके संबंध में नई नीति लागू करना चाहते हैं और वो नीति ऐसी हो कि हमारे गरीब के जीवन में जो आज अंधेरा है शराब के चलते वो समाप्त हो और इस दिशा में काम करिए। और चूंकि इसको वर्कआउट किया जा रहा है, अभी उसकी पूरी तैयारी प्रारंभिक तौर पर की जा रही है, इसलिए आज के दिन उसके डिटेल को कहना शायद न तो संभव है और न मुनासिब, क्योंकि आज मैं कुछ कह दूं तो उसके बाद तो वो अंतिम चीज है। हमने जो कहा है, हम बिहार में महिलाओं के दर्द को समझ सकते हैं। हमें चाहिए तरक्की। अगर कुछ पैसे का नुकसान भी हमारे खजाने में होता है तो और चीजें वेट कर लेंगी, थोड़ा धीमी होगी साल दो साल प्रगति, लेकिन धीरे धीरे हम उसको एडजस्ट करेंगे और हमको मालूम है अभी बहुत चीजें।
आपको याद दिला दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी वादे में कहा था कि वो प्रदेश में शराबबंदी को लागू करने की कोशिश करेंगे और लग रहा है कि वो तारीख जो है 1 अप्रैल 2016 होगी, लेकिन उसका स्वरूप क्या होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। और अब रुख करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। तुर्की की सेना ने एक ऑडियो जारी किया है जो कि सेना के मुताबिक उस चेतावनी का स्वर है जो बार बार रूसी लड़ाकू विमान के पायलटों को दी गई, लेकिन तुर्की द्वारा गिराए गए विमान के जीवित बचे पायलट का कहना है कि उन्हें किसी तरह की चेतावनी नहीं दी गई। रूसी विमान को गिराए जाने से रूस और सीरिया के बीच तनाव अभी कायम है। रूस और तुर्की के बीच तनाव अभी कायम है। रूस ने कल तुर्की के साथ सैन्य संपर्क तोड़ दिया और कहा कि वो सीमा पर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम तैनात करने वाला है। रूस ने तुर्की से आयात किए जाने वाले खाद्य सामान पर भी सख्त नियंत्रण लगाने की बात कही है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरों का सार सुना रही हैं प्रगति सक्सेना।
तुर्की की सेना ने ये ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की है। तुर्की के मुताबिक ये उस चेतावनी की रिकॉर्डिंग है जो रूसी लड़ाकू विमानों को बार बार दी गई, लेकिन इस हादसे में जीवित बचे पायलट कैप्टन कॉन्स्टेंटिन मुराख्तिन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि विमान को मार गिराने से पहले ऐसी कोई चेतावनी नहीं दी गई।
कोई चेतावनी नहीं दी गई, ना तो रेडियो से ना ही किसी विजुअल से। उनसे कोई भी संपर्क नहीं हुआ, इसलिए हम उसी रास्ते पर बढ़ते गए। अगर वो चेतावनी देना चाहते थे तो हमें चेतावनी दे सकते थे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और अचानक एक रॉकेट हमारे विमान पर दाग दिया गया।
कैप्टन कॉन्स्टेंटिन मुराख्तिन के शब्द। रूस में तुर्की के खिलाफ काफी नाराजगी है। रूस ने धमकी दी है कि वो न सिर्फ सीमा पर अपने बंदोबस्त और कड़े कर देगा बल्कि तुर्की से आयातित सामान पर भी नियंत्रण लगा देगा। तनाव बढ़ने की आशंका के चलते अमेरिका, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से शांत रहने की अपील की है। इस बीच संबंधित देशों का ध्यान वापस मूल समस्या की तरफ लाने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति आज मॉस्को का दौरा कर रहे हैं। फ्रांस और रूस के राष्ट्रपति सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई पर चर्चा करेंगे। फ्रांस में चरमपंथी हमले और मिस्र से आ रहे रूसी विमान को गिराने की जिम्मेदारी आईएस ने ली थी। अब फ्रांस और रूस का एक ही दुश्मन है, चरमपंथी गुट इस्लामिक स्टेट। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इटली के प्रधानमंत्री से भी मिले। एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने कहा कि चरमपंथियों से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होना होगा।
Cette suite de rencontres doit permettre
इन बैठकों के दौरान हमें कुछ निष्कर्षों पर पहुंचना होगा जो पेरिस में हुई दुखद घटना पर कार्रवाई करने के लिए जरूरी है। अगर पूरी दुनिया के हर एक क्षेत्र में आईएस से पैदा हुए खतरे मजबूत होते जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर कोई फैसला नहीं ले पाता तो इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता।
फ्रांसवा ओलांद के शब्द। उधर ब्रितानी प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने भी ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में सीरिया में आईएस के ठिकानों पर हवाई हमलों की पैरवी करते हुए अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि पेरिस पर हुए हमलों के बाद अगर ब्रिटेन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो मित्र देश यही पूछेंगे कि अब नहीं तो आखिर कब। उन्होंने कहा कि आईएस पर ये हवाई हमले एक वृहत रणनीति का हिस्सा होंगे। रूस ने सीरिया में अपने हवाई ठिकाने पर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल तैनात कर दी है ताकि भविष्य में उनके लड़ाकू विमान पर हुए ऐसे हमलों से निपटा जा सके। तुर्की लगातार रूस से सहयोग करने और इस विमान को गिराए जाने वाली बात को तूल न देने की बात कर रहा है। रूस तुर्की से नाराज तो है लेकिन उसकी प्राथमिकता फिलहाल आईएस से निपटना है। जाहिर है रूस से तल्ख हुए रिश्तों को सुधारने के लिए तुर्की को विशेष प्रयास करने होंगे।
रिपोर्ट सुना रही थी प्रगति सक्सेना। और अब बारी है आपके राय की, आपके शिकवे, आपकी शिकायतें, आपकी चिट्ठियों को लेकर के हाजिर हैं बीबीसी रेडियो संपादक राजेश जोशी और इंदु पांडे।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का। आज मेरे साथ हैं
इंदु पांडे।
जी हाँ, तो इंदु जी, आपकी जो चिट्ठियां हैं, आपके हाथ में मैं जो चिट्ठियां देख रहा हूं उसमें कुछ ईमेल हैं और कुछ पोस्टकार्ड हैं। शुरुआत आप कहां से करने वाली हैं? क्या वो हमारी तारीफ की चिट्ठी है या हमारी आलोचना की चिट्ठी है, जरा कुछ बताइए।
कई बार मुझे लगता है कि चिट्ठी का मतलब ही होता है खुशी और खुशी का मतलब होता है तारीफ।
अच्छा, आपने अपने मतलब की बात निकाल ली।
जी, ये है रामचंद्र सुथार, गांव फलसुण, जिला जैसलमेर से। कहते हैं कि आधी आबादी 100 चेहरे इस विशेष श्रृंखला में बीबीसी हिंदी के सुशील झा की विशेष रिपोर्ट सुनी जो फेसबुक पर महिलाओं की सक्रियता पर आधारित थी, बहुत अच्छी लगी। और सबसे ज्यादा खुशी हुई इनको सुशील झा को सुनने के बाद।
जी, सुशील झा बहुत अरसे बाद रेडियो पे आए और रिपोर्ट की उन्होंने, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी अब कुछ अलग है, सोशल मीडिया की जिम्मेदारी है, इसलिए आप उनकी आवाज लगातार नहीं सुन पाते हैं। लेकिन रामचंद्र सुथार जी, आपकी चिट्ठी से जाहिर हो गया कि आप सुशील झा को कितना पसंद करते हैं और उनकी पत्रकारिता को कितना पसंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो हमारे श्रोता लगातार हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमारी वेबसाइट देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन्हें मालूम होगा कि हमने 100 विमेन जो सीरीज चलाई है, हिंदुस्तान की 100 ऐसी महिलाओं के बारे में हम आजकल विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं जिन्होंने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत नाम कमाया है, बहुत कुछ हासिल किया है, समाज को बहुत कुछ दिया है। तो जैसा कि इंदु जी, हमारे श्रोताओं को मालूम ही होगा कि बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन हमारे स्टूडियो आई थी और एक दिन हमारी वो संपादक रहीं और उनकी सरपरस्ती में हमने कार्यक्रम किया।
ये हमारे पास चिट्ठी है खोजेंद्र सिंह की, जिन्होंने लिखा है छत्तीसगढ़ से। 100 वुमेन सीरीज को काफ़ी पसंद किया इन्होंने लेकिन थोड़े से मायूस हो गए हैं क्योंकि उस लिस्ट में तीजन बाई का नाम नहीं है। इसलिए
अरे, तीजन बाई का नाम कौन नहीं जानता। और खोजेंद्र सिंह जी, तीजन बाई का नाम बीबीसी की इस लिस्ट में हो ना हो, वो तो पूरा हिंदुस्तान जानता है, विदेशों में उनको जाना जाता है। और हमारा ये कोई दावा भी नहीं है कि जो 100 महिलाओं, जिन 100 महिलाओं का जिक्र हम कर रहे हैं उनके अलावा भारत में और कोई महिला है ही नहीं या किसी ने कुछ उपलब्धि हासिल नहीं की है, ऐसा कोई दावा नहीं है। बहुत सारी महिलाएँ, बहुत सारी लड़कियाँ रह गई हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत कुछ करके दिखाया है। तीजन बाई का नाम इस लिस्ट में हो ना हो, उनका एक ओहदा है और उस ओहदे से हम सब वाकिफ हैं।
बिल्कुल। और ये चिट्ठी है हमारी पास अगली कैलाश गौड़ की। कहते हैं कि लगभग 10 साल से ये बीबीसी को सुन रहे हैं लेकिन पिछले 3-4 सालों से आपकी घटिया पत्रकारिता के कारण उन्होंने हमें सुनना बंद कर दिया है।
अरे, हमारे कार्यक्रम सुनना बंद कर दिया है बीबीसी की घटिया पत्रकारिता के कारण? अच्छा, हाँ, आगे क्या लिखते हैं?
लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी भी कुछ साख बचा के रखी है, जिसमें एक हैं आप राजेश जोशी। रेहान फजल की वजह से ये कभी कभी सुन लेते हैं बीबीसी को।
भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कैलाश गौड़ साहब।
साथ ही साथ अब ना तो मैं उसके प्रोग्राम अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकता हूँ ना सुन सकता हूँ।
मोबाइल पर डाउनलोड करने वाली जो बात है, ये शिकायत दरअसल, कैलाश गौड़ जी, आप 2-3 चीजों को आपने मिला जुला दिया है। आपकी नाराजगी हमसे है, हमारी पत्रकारिता से है या तकनीकी गड़बड़ियां जो हो रही हैं उससे है, ये सब 3-4 चीजों को आपने मिला दिया है लेकिन हमें ये नहीं बताया है कि आप वाकई नाराज हैं किस बात पर। पत्रकारिता का ऐसा कौन सा उदाहरण
उदाहरण आप देंगे जिसमें आपको लगा कि घटिया पत्रकारिता की है या आपको लगा कि इससे बेहतर हो सकता था, अगर आप अगली चिट्ठी में कुछ ठोस उदाहरण दे सकें तो हमें आसानी होगी कि हम अपने रास्ते दुरुस्त कर सकें, हम अपने तौर तरीके बदल सकें। लेकिन हाँ, ये बात जहाँ तक आपकी है कि आप हमारे कार्यक्रमों को अब डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, वो एक तकनीकी खराबी ज़रूर है, उस पर हम काम कर रहे हैं। बहुत सारे श्रोता हमारे फ़ोन कर रहे हैं कि हम प्रोग्राम अब डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे। थोड़ा सब्र कीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही ये सुविधा उपलब्ध होगी, चाहे पॉडकास्ट की या डाउनलोड की, आपको बताया जाएगा और आपका हमारा साथ तो बना ही रहेगा।
बिल्कुल। अगला हमारे पास ईमेल है रामेंद्र दीक्षित का। लिखते हैं कि वसतुल्ला खान की जो डायरी है वो बहुत अच्छी लगती है और ये सुबह सुबह मुस्कुराने पर मजबूर कर देती
है। क्या बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग भी जब सुनते हैं तो मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं वसतुल्ला खान साहब।
आगे कहते हैं कि रेहान फजल की आवाज में जादू है।
जादू तो है साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एकदम जादू भरी आवाज है उनकी।
कुछ और लोग हैं जिनको ये बहुत मिस करते हैं, संजीव श्रीवास्तव, कुर्बान अली, परवेज आलम साहब, कहते हैं कि भाई ये लोग कहाँ चले गए।
जी, ये हमारे पुराने साथी अपने अलग अलग कामों में लगे हुए हैं, लेकिन बीबीसी में अब ये काम नहीं करते हैं। जहाँ भी हैं बहुत बेहतर हैं और हमसे लगातार संपर्क रहता है इनका। तो अब मुझे लगता है कि समय हुआ है तो इजाजत लें, चलते चलते पता बता दें। बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003।
नमस्कार।
आपकी चिट्ठियों के बाद अब बारी है खेल समाचारों की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच नागपुर टेस्ट के दूसरे दिन का खेल समाप्त हो चुका है। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए इस तीसरे मैच में भारत मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। भारत को जीत के लिए दक्षिण अफ्रीका के सिर्फ 8 विकेट निकालने हैं, जबकि अभी पूरे 3 दिन का खेल होना बाकी है। भारतीय टीम ने पहली पारी में मिली 136 की बढ़त के आधार पर प्रोटीज टीम को जीत के लिए 310 रन का लक्ष्य दिया। हालांकि मैच में खेल से ज़्यादा चर्चा पिच को लेकर हो रही है। इसी को लेकर राखी शर्मा ने, जो हमारी सहयोगी हैं, बात की है पूर्व क्रिकेटर मदन लाल से।
हाँ बिल्कुल, ऐसा लग ही रहा था कि साउथ अफ्रीका जो है इस विकेट पे उनके लिए बैटिंग करना मुश्किल है, क्योंकि देखिए जैसे बॉल टर्न कर रहा है, जैसी विकेट है उसके हिसाब से तो लगता ही था। पर ये है कि उनके जो मेन बैट्समैन है, जैसे डिविलियर हुआ या डुमनी हुआ या आमला हुआ, इनके रन करना बड़े जरूरी थे। अगर इनके रन नहीं बनते तो टेल एंडर के लिए रन बनाना बड़ा मुश्किल है इस विकेट के ऊपर।
सर, टर्निंग ट्रैक तो ठीक है, लेकिन ये पिच तो कुछ ज्यादा ही आगे नहीं चली गई है टर्निंग के मामले में? मतलब एक टेस्ट क्रिकेट में आप क्या टेस्ट करना क्या चाहते हैं, टेम्परामेंट, फुटवर्क या डिसिप्लिन? यहाँ तो
देखिए, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें क्या प्रूव करना चाह रहे हैं भारतीय टीम, मेरे को ये मालूम नहीं है। पर ये बैड पब्लिसिटी है फॉर टेस्ट मैच हमारे लिए, क्योंकि देखिए ऐसे विकेट नहीं बनने चाहिए मेरे विचार में, क्योंकि अच्छे विकेट पे भी भारतीय टीम जीत सकती है। कंटेस्ट होना चाहिए, आपको एडवांटेज लेना चाहिए, होम एडवांटेज आपको होना चाहिए कि एक दो दिन विकेट अच्छा खेले फिर उसके बाद टर्न करना शुरू कर दे, तो कम से कम मैच जो है 4-5 दिन चल जाए। पर ये ऐसी विकेट जब दूर से देखकर ऐसा लग रहा था कि ये मैच 3 दिन या 3.5 दिन ही लास्ट करेगा, तो ये मैच वैसे ही चल रहा है। ठीक है, भारतीय टीम इसमें जीतेगी, पर इसमें कोई पाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ यही पाया कि हमने ये टेस्ट सीरीज जीती अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, बाकी कुछ नहीं मेरे ख्याल।
थोड़ा बहुत श्रेय देंगे या सब सारा श्रेय पिच को ही चला जाएगा, हमारे स्पिनर्स ने कुछ किया?
भारतीय बॉलर को जरूर हम श्रेय देंगे, क्योंकि उन्होंने विकेट्स निकाले हैं, जो विकेट्स निकालता है उसकी सराहना तो होनी चाहिए। बट इस विकेट पे करने को कुछ नहीं है, आपने लेंथ पे बॉल डालना, विकेट आप मिलती चले जाएंगे, कब मिलती है ये देखने वाली बात है, क्योंकि हमारे भारतीय स्पिनर जो है काफी अच्छे भी है उनसे, क्योंकि एक एक्यूरेसी बड़ी है हमारे पास, वेरिएशन बहुत ज्यादा है और कॉन्फिडेंस जो है इस वक्त तो उनका बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एडवांटेज जो है भारतीय बॉलर्स को ही है।
तो सर, अब यहाँ से अगर साउथ अफ्रीकन टीम ये सीरीज हारती है, जो कि 9 साल में पहली बार होगा टेस्ट सीरीज वो अपने देश के बाहर हार रही है, तो क्या एक सेटबैक होगा साउथ अफ्रीका के लिए, या फिर क्योंकि विकेट ही ऐसा था तो शायद वो भी चिंता नहीं करेंगे ज्यादा?
नहीं, ज्यादा चिंता नहीं करेंगे, उनको मालूम है कि ये विकेट कैसे हैं और इन विकेटों में खेलना, कोई भी टीम जो है बाहर से आएगी वो नहीं खेल पाएगी। और ये सीरीज तो सिर्फ देखिए किसी ने रन तो बनाया ही नहीं है, और ये एक सीरीज ऐसी है, ये सीरीज है जिसमें सिर्फ बॉलर्स ने ही किया, और इस सीरीज से सिर्फ यही होगा कि भारत ने सीरीज जीती है, बस और कुछ नहीं।
ये थे पूर्व क्रिकेटर मदन लाल और उनसे बात कर रही थी राखी शर्मा। और अब आखिर में प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। संसद सत्र के पहले दिन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में सेक्युलर शब्द का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ है और इसे बंद किया जाना चाहिए। रूस के सरकारी मीडिया के मुताबिक रूसी सेना तुर्की से 50 किलोमीटर दूर लद्दाख के प्रांत में अपने सैन्य बेस पर अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा तंत्र
तैनात करने जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि तुर्की जानबूझकर मॉस्को और अंकारा के बीच रिश्तों को खराब करना चाहता है। सीरिया में हवाई हमले के लिए ब्रिटानी सांसदों की मंजूरी लेने के लिए अपना पक्ष रखते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा कि ब्रिटेन को हवाई हमले करने चाहिए। मानवाधिकार की यूरोपियन अदालत ने फ्रांस की एक मुस्लिम कार्यकर्ता की अपील खारिज कर दी, जिसमें उसे कार्यस्थल पर हिजाब पहनने की इजाजत मांगी थी। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। दिन भर में आज इतना ही, आपसे अगली मुलाकात होगी डेढ़ घंटे बाद घटना चक्र में। सभी साथियों संग निखिल रंजन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।